الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين میرے محترم بزرگوں عزیز بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو لیکن ہم پر یہ مزید کرم فرمایا کہ ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا فرمایا یا کسی کو یہ توفیق دی کہ اس نے دین اسلام کو سمجھ کر اور اسلام قبول کیا اور اب وہ مسلمان اور مومن ہے. ان سب کی کچھ ذمہ داریاں دی گئیں, ان کو کام دے کر بھیجا گیا اور سال میں مختلف موقع ایسے آتے ہیں جو ہماری سیرت اور ہماری تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں ان نمونوں کی جو شروع دور کے مسلمانوں نے پیش کیے تھے. آج 28 ذی‌الحجہ ہے, کل اگر چاند ہوتا ہے تو اسلامی سال کا آغاز ہوگا, پہلی محرم کا آغاز ہو جائے گا. جب جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیں خاص طور سے دو باتوں کی یاد دلاتا ہے, ایک ہجرت ہے اور دوسرے شہادت. اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کے لیے اور اس کو شروع کرنے کے لیے جس واقعے کو چنا گیا کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال کون سا ہو, وہ ہجرت کا سال ہے. ہجرت سے اس کی شروعات کی گئی. دوسری طرف اسی مہینے میں نواسۂ رسول اور نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. یہ دونوں باتیں, چاہے ہجرت ہو یا شہادت ہو, یہ دونوں باتیں ہم سے کچھ حوصلہ چاہتی ہیں, ہم سے جذبہ چاہتی ہیں, قربانی چاہتی ہیں, ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم اللہ پر اپنا یقین مضبوط کریں. اللہ پر جو اپنا ایمان ہے اس ایمان کا بار بار جائزہ لیں, اس کو جانچیں اور سمجھیں کہ ہم ایمان میں کہاں کھڑے ہیں, کس مقام پر ہیں, ہمارا یقین کیسا ہے, ہمارے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے, آخرت کی کیا حیثیت, ہم اپنی جان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, مال کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہر آنے والے مہینے میں اور ہر آنے والے دوسرے سال میں, اس دور کے مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش اور سب سے برے حالات سے ہم ہی گزر رہے ہیں. کیا قرآن مجید ایسے حالات کا تذکرہ نہیں کرتا؟ کیا قرآن مجید حل نہیں بتاتا کہ ان آزمائشوں سے جب آپ گزریں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا قرآن مجید یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی آزمائشوں کے برے انجام سے بچ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ رہنمائی کی گئی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، ان کو ایڈریس کر کے کہا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ آزمائشیں ہوں گی۔ یہ آزمائشیں صرف مکی دور میں نہیں ہوئی جب مسلمان تھوڑی سی تعداد میں تھے، یہ آزمائشیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کو ایک عروج حاصل تھا، جب مسلمانوں کا اپنا اقتدار تھا، مسلمان خود اپنے سردار تھے، کوئی دوسرا ان کا سردار نہیں تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو آزمائشوں سے بچا لیا گیا، اور کبھی کوئی آزمائش نہیں ہوئی کہ اب ہم مکے سے مدینے آ گئے، ہر طرح سے محفوظ ہو گئے، اب آرام سے کھانا کھائیں گے، آرام سے کپڑے پہنیں گے، گھر بسائیں گے، ترقی کریں گے، تجارت کریں گے، اور دنیا میں جس طرح عام لوگ رہتے ہیں اس طرح رہیں گے آرام سے، اور جب موت آئے گی تو چلے جائیں گے۔ مسلمانوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، اسلام کا یہ مطلب سمجھا ہی نہیں تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کسی بھی صورتحال سے نجات مل جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ہم محفوظ کر دیے جائیں گے اور کسی جزیرے میں بند کر دیے جائیں گے، کسی محل کے اندر ہمیں محفوظ کر دیا جائے گا اور کوئی گزند نہیں پہنچے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھ رکھا تھا۔ جب مدینے میں آئے تو چوطرفہ حملے ہونے لگے، مکے کے اندر تو صرف وہاں کے جو شرک کرنے والے لوگ تھے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب مدینے میں آئے تو یہاں مسلمانوں کے لباس میں، ان کی مسجدوں میں، ان کی صفوں میں، ان کے گھروں کے آس پاس، ان کے محلوں میں مسلمان بن کر لوگ جی رہے تھے جو اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچا رہے تھے، جو منافقین تھے سب سے بڑے ان کے دشمن تھے۔ اور پھر مکے کے جو لوگ تھے وہ غافل نہیں ہوئے تھے، وہ آج بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اور پھر تیسری طرف یہودی تھے جو ان کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، اور منافقین، اور ان میں بڑا ساز باز تھا اور بڑی دوستی تھی، یہ سب مل کر ایک ساتھ آئے۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا گیا، جو مدنی سورہ ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، مال میں بھی آزمایا جائے گا، تمہارا مال کم کیا جائے گا، تمہارا گھاٹا ہوگا، لوگ دوسرے اس پر قبضہ کریں گے، چاہے تمہاری جائیداد ہو، تمہارا مال ہو، ان سب میں آزمایا جائے گا، اور جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، تمہاری جانیں جائیں گی، بڑی بڑی جنگیں تم پر مسلط کی جائیں گی، لنچنگ کی جائے گی، جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں مٹانے کی حق والوں کو، باطل کو ماننے والے لوگ وہ سارے کام کریں گے، اور تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ تم اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں سننا پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، آسمانی مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اور جو شرک کرنے والے ہیں، جو آسمانی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، جو مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے تمہیں بہت بہت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ پھر فرمایا گیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو گے، اپنے موقف پہ جمے رہو گے، اپنے اسٹینڈ پر قائم رہو گے، اللہ پر اپنے یقین کو باقی رکھو گے، تدبیر کرتے رہو گے، پلاننگ کرتے رہو گے، سمجھتے رہو گے، لانگ ٹرم پلاننگ کرو گے، شارٹ ٹرم پلاننگ کرو گے، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو گے، کسی اور سے نہیں ڈرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عظیمت کے کام ہے، یہ ہمت کے کام ہے، یہ مقصد ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا تھا، تو انہوں نے لکھا کہ یہ کار مقصود ہے، یعنی یہی مقصد ہے کہ تم یہاں پر جم جاؤ، رہ جاؤ۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب صبر کرنے کا کہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی تو واویلا مت مچاؤ، ایک تو وہی ہے کہ تم آہو بکا مت کرو، رو پیٹو مت، مایوس مت ہو جاؤ، لیکن دوسرا مطلب صبر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ تم जम जाओ, जो तुम्हारा तरीका जिसको तुमने सही समझा उस पर जमे रहो, तकलीफ की वजह से उसे छोड़ मत दो, राय मत बदल दो, पार्टी मत चेंज कर दो, बार बार अपना स्टैंड मत बदलो, एक बार जो तुमने समझ लिया उस पर जमे रहो। किसी ने गाली दे दी, आपने अपनी बात बदल दी, किसी ने आप पर हाथ उठा दिया, अपनी बात बदल दी, तुम बदलो मत, जमे रहो उसके ऊपर, और सो मत जाओ, जागे रहो, जागते रहो। सब्र के माना ये होते हैं कि तुम तदबीर भी करो, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र से मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। जैसे नमाज इंसान अल्लाह के अपने को हवाले कर देता है नमाज में कि हम आपसे मांगते हैं, और सब्र में ये बताया गया कि वो तैयारियां भी करता रहता है, इंतजार भी करता रहता है, सब्र के अंदर इंतजार भी आता है। इसलिए जब भी हम लोग सब्र की बात करते हैं तो लोग ये समझने लगते हैं अरबी के सब्र और उर्दू के सब्र में बड़ा फर्क है। फौरन ये समझते हैं कि ये कहते हैं कि सब्र का मतलब ये है कि चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, जबान अपनी बंद कर लो, अपना कलम रोक लो, डर जाओ, खौफ खा जाओ, जो हो रहा है होने दो, बल्कि एक गाल बढ़ाया जाए तो दूसरा गाल बढ़ा दो, पीटो हमें, मारो, हम इसी लायक हैं। सब्र का ये हरगिज मतलब नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि इंसान इंतज़ार तो करे, फौरन ऐसा रिएक्शन ना कर दे कि जिसकी वजह से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए, जिसको कोई नहीं कहे कि ये समझदार आदमी, लेकिन तुम समझ कर अपनी तदबीर के बाद अल्लाह के से इंतज़ार रखो, उसकी मदद का इंतज़ार करो। फिर सूरह बकरा के अंदर बार बार फरमाया गया, वो भी मदनी सूरह है, मदनी ज़िंदगी में ये बात फरमाई गई कि देखो तुम्हें नुकसान तो पहुँचेगा, वलनबलुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, कुछ आजमाइशें तुम्हारे माल में होंगी, कुछ जानों में होंगी, कुछ डर तुम्हें महसूस होगा, भूख बढ़ जाएगी तुम्हारी, कभी भूख से आजमाए जाओगे, खाने को खाना नहीं मिलेगा, और कभी तुम्हारे माल को और तुम्हारे फलों को और उसमें सारी ग़िज़ाएँ आ जाती हैं, उस उन सारी चीज़ों को कम करके आजमाया जाएगा, नक्स कर दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा। उसके बाद फरमाया गया कि वबशिर साबरीन, फिर फरमाया गया जो सब्र करने वाले उनको खुशखबरी दे दीजिए, वो नहीं घबराएंगे, भूख भी लगेगी, खौफ भी होगा, माल भी घाटे में जाएगा, जाने भी जाएंगी, और फलों से और जितनी चीज़ें इंसानी ग़िज़ाएँ हैं और जो इंसान की ज़रूरतें हैं उन सब में कमी आएगी, लेकिन उनको खुशखबरी दे दीजिए। और ये कौन लोग हैं, الذين اذا اصابتهم مصيبه, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो قالوا, कह उठते हैं, انا لله وانا اليه راجعون, यानी कि सिर्फ किसी की मौत की खबर मिलती है तो ये पढ़ते हैं, कभी भी किसी मुसीबत से दोचार होते हैं कहते हैं انا لله وانا اليه راجعون, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और जो भी यहाँ की जिंदगी है जिस अदब के साथ और जिस तरीक़े के साथ गुजारने का हुक्म दिया गया है वो गुजारेंगे, आजमाया जाएगा, उसका सामना करेंगे, लेकिन उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन उससे घबरा कर बैठ नहीं जाएंगे, इसलिए कि पलट कर अल्लाह के सामने जाना है, वहाँ जालिमों को उनके जुल्म का बदला मिलना है, और हमारी भी हमारा भी हिसाब होना है कि हमने क्या किया था उस वक्त। फिर सूरह इसी आयत के बाद फरमाया गया, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही वो लोग हैं कि जिनके ऊपर उनके रब की नवाजिशें हैं, इनायतें हैं, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर उनके रब की रहमतें हैं, यही वो लोग हैं जो सही रास्ते पर कायम हैं, सही रास्ते पर कायम और हिदायत याफ्ता हैं ये लोग, कि जो ये समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती। फिर सूरह बकरा में दूसरे पारे में ही चंद रुकू के बाद फिर फरमाया गया, अम हसिब तुम, ए मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है, अंतदखुलुल जन्नता, कि जन्नत में चले जाओगे, हथेली पे सजा कर और सोने के तश्त में जन्नत रख कर दे दी जाएगी, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और पिछली कौमों को जिन चीज़ों से आजमाया गया और जो आजमाइशें उनके ऊपर आईं उनसे तुम दो चार नहीं किए जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, क्या तुमने ऐसा समझ रखा है, मस्सतहुमुल बसाउ, सुन लो कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, मस्सतहुमुल बसाउ वज़्ज़राउ, तंगी पेश आई, तकलीफ़ों से उनको दोचार होना पड़ा, माल में, जान में, हर तरह की, घर छोड़ने पड़े, आलो औलाद छोड़ने पड़े, फिर आगे फरमाया गया वह जुलजिलू, और उनको हिला दिया गया पकड़कर। ऐसा लगा कि अब हम कदम हमारे जमीन पर नहीं रह पाएंगे, जमीन फटेगी और हम अंदर चले जाएंगे। उनके पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। वह जुलजिलू, और सिर्फ आम लोग नहीं, हत्ता यकूल अर रसूल वल्लज़ीन आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, रसूल कह पड़े। रसूल मायूस होकर नहीं कहते हैं, लेकिन उनको इंतजार था और लोगों की बेचैनी देखकर ये कह पड़े कि अल्लाह मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। फरमाया गया अला, सुन लो, इन नसरुल्लाह करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब। सूरह सफ में फरमाया गया कि तुम अगर अल्लाह से तिजारत करोगे तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात देगा। तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओगे और अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में अनथक कोशिशें और मेहनत करोगे, और जो भी उसके रास्ते हैं वो इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे। व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और चीज़ देंगे जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, नस्रुम मिनल्लाही व फतहुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी और करीबी फतेह मिलने वाली है। लेकिन जो कंडीशंस लगाए गए हैं, जो शर्तें लगाई गई हैं, वो अहम हैं। हमें सिर्फ इस बुनियाद पर इंतज़ार रहता है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम ही क्यों मारे जाते हैं, हमारे ही साथ क्यों आजमाइश होती है। एक बात तो जहन नशी कर लीजिए कि दुनिया में सबके साथ आजमाइशें होती हैं। दुनिया है ही है आजमाइश की जगह। दुनिया में आजमाइशों से कोई बचा हुआ नहीं है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। कुछ मीडिया में ज़्यादा बताए गए हैं, किसी को छुपाया गया है। कुछ लोग जहनी तौर पे परेशान हैं और उन उलझनों में पता नहीं कितनी जानें बर्बाद कर रहे हैं कि कहीं ये लोग हमारे खिलाफ ना आ जाएं। कुरान ने इसका भी जिक्र किया है, यअलमून कमा तअलमून व तरजून मिन अल्लाह मा ला यरजून। उनको भी तकलीफ़ पहुँचती है, उनको भी दर्द पहुँचता है जैसे तुम्हें पहुँचता है, लेकिन तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हो और उनके पास कोई उम्मीद नहीं, उनके पास कोई सहारा नहीं। तुम्हारे पास सहारा है, तुम्हें उम्मीद है। इन तमाम आयतों में आप देखें, या तो ये बताया गया कि तुम्हारे साथ ये होगा, या ये बताया गया है कि ऐसी सूरत में अगर तुम फला फला काम करोगे तो अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह की रहमतें हैं। कहीं ये गारंटी नहीं ली गई है कि उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। पूरी तारीख इसके इस पर गवाह है। हर दौर में मुसलमानों के साथ किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई आजमाइश होती है, लेकिन उसका जो हल कुरान मजीद ने पायदार तरीके से बताया है, हर दौर में उसके करने की अलग अलग शक्लें होंगी, उसकी हिकमत अलग होगी, लेकिन करने के काम वही है। जितना किया जाएगा उतना ज़्यादा अल्लाह ताला की हिफाजत मिलती चली जाएगी। ग़ज़वे उहद से जब मुसलमान लौट रहे थे, और ग़ज़वे उहद में शिकस्त हुई थी, हार हुई थी, मक्के के लोग जीत कर जा रहे थे, तो किसी ने रास्ते में कहा कि अभी तो मुसलमानों की हार हो गई थी, अगर यहीं उनको पकड़ कर दबा देते पूरी तरह से तो ये ताकत ही ख़त्म हो जाती और इनसे हम नजात पा जाते, ये बीच बीच में छोड़ कर हम चले आए। फतेह तो हुई लेकिन आज भी वो लोग बाकी हैं, चलें फिर से कुछ करते हैं। और भेजा, अपने एक नुमाइंदे को भेज कर लोगों को बताया कि जाकर मुसलमानों से कहो कि वो लोग फिर तैयारी करके आ रहे हैं मक्के से, और डर कर रहो, तुम लोग होशियार रहो, घर में सब सो दो, दरवाजे खूब अच्छी तरह बंद कर लो, और कहीं इधर से हमला हो सकता है, उधर से हमला हो सकता है, और कहीं कोई तुम्हारी जायदाद हड़प कर सकता है, कहीं कोई तुम्हारा नाम रजिस्टर से निकाल सकता है और कह सकता है कि तुम मदीने के नहीं हो, चलो यहाँ से निकलो। और ये सब डरा कर रखना उनको, ताकि हर वक्त डर के साथ, खौफ के साथ सहमे हुए जीते रहें और सोचें कि बस जो चंद सांसें हमें मिल रही हैं ये हुकूमत का एहसान, जो कुछ भी हो रहा है इन दुश्मनों का एहसान है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या करें। जब निकाल देंगे उस वक्त कैंपों में चले जाएंगे और इसी तरह से रहेंगे और डरते रहेंगे। फरमाया, उन्होंने आकर बताया तो अल्लाह ताला ने दिल के अंदर उनके रोब डाल दिया और मुसलमानों के दिल के अंदर इत्मीनान पैदा कर दिया। उसका जिक्र फरमाया, अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल मिन बादी मा असाबहुमुल कर्ह, जख्मों से चूर होने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते रहे, जैसा कहा गया वो उस हुक्म पर अमल करते रहे। फिर लोगों ने आकर कहा कि इन नास क़द जमाऊ लकुम, कि सारे लोगों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ फौज तैयार कर दी है, फख़शौहुम, देखो उनसे डर कर रहना, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। फ़ज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान में और इजाफा हो गया, उनका ईमान और मजबूत होता चला गया। और उस वक्त उन्होंने कहा हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, बेहतरीन कारसाज है, रफ़ीक है, निगरानी करने वाला है, वो देखने वाला है, वो संभालने वाला है। कुरान ने कहा फनकलबू बिनअमति मिनल्लाहि व फ़ज़्ल लम यमसस्हुम सू, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से वो इस तरह लौटे कि उनको किसी किस्म की अजियत और तकलीफ व मुसीबत नहीं पहुंची। वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, और अल्लाह के रास्ते पर और उसकी खुशनूदी पे चलते रहे, उसके ताबे रहे, उससे नहीं हटे किसी भी रास्ते, और अल्लाह बड़े फजल वाले हैं। फिर फरमाए इन्नमा ज़ालिकुम अश्शैतानु युखव्विफु औलियाअह, ये शैतान है जो अपने दोस्तों से तुम्हें डराता है। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तुम उनसे मत डरना, मुझसे डरना अगर ईमान वाले। वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान वाले हो बददिल मत होना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वला तहिनू का तर्जमा किया बददिल मत होना। कभी कभी आदमी डरता नहीं है, मायूस नहीं होता है, लेकिन दिल फीका पड़ जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ज़िंदगी का कोई लुत्फ ही नहीं रहा, मज़ा ही नहीं रहा, हर चीज़ उसको बेकार सी लगती है। कहा कि अपने दिल को टूटने मत देना, गम में मत पड़ जाना हर वक्त। अगर तुम ईमान पर कायम हो तो सरबुलंदी तुम्हें ही मिलने वाली है, बुलंदी तुम्हें मिलने वाली है, लेकिन ईमान पर कायम हो या नहीं इसे देखते रहना। ऐसे तमाम हालात में भी सूरह अनफाल में एक 5 निकाती प्रोग्राम बताया गया कि ऐ ईमान वालों, जब किसी जमात से, किसी ग्रोह से, किसी लश्कर से तुम्हारा सामना हो जाए, इज़ा लकीतुम फ़ीअतन फ़स्बुतू, पहले तो जम जाना, डट जाना। फिर ये नहीं फरमाया गया कि बस तुम भरोसा कर लेना है, तुम्हारे पास जो चीज़ें उन पर भरोसा कर लेना अपनी ताकत पर, बल्कि ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ फरमाया गया कि तुम कसरत से अल्लाह को याद करते रहना, अल्लाह की याद को कभी मत भुलाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बहुत तेज़ी से रात में घबराए हुए उठे और आपने फरमाया अनज़लल्लाहु मिनल ख़ज़ाइन, अल्लाह ने बड़े ख़जाने नाजिल फरमाए ज़मीन में, अनज़लल्लाहु मिनल फितन, और बहुत से फितने भी फैला दिए हैं रातों रात। मैं यूकिज़ु सवाहिबल हजुरात, ये कमरों के अंदर हजरों में सोने वालियों को कौन जगाएगा कि उठकर अल्लाह से मांगे और पनाह मांगे फितनों से। रुब कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन यौमल क़ियामा, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो आज लिबास पहनती हैं, क़ियामत के दिन उनके जिस्म पर लिबास नहीं होगा, इसलिए कि वो अपने दीन से हट चुकी होंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरह तरह के फितने आएंगे, लेकिन तुम्हें पलट कर लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। कहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक ऐसा दौर आएगा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा और चारों तरफ से दबाया जाएगा, जुल्म होगा, तो हम क्या करेंगे उस वक्त। आपने फरमाया तखुज़ून बिमा तारिफून, जो बातें तुम अपने दीन के बारे में जानते हो उसको मजबूती से पकड़े रहना। व तदऊन मा तुनकिरून, शक शुबे में मत पड़ना कि पता नहीं ये हुक्म सही है कि नहीं, ये पर्दे वाला शायद गलत है, शायद वो वाला हुक्म गलत है, क़ुरबानी वाला गलत है, या वो गलत है, या शायद इसमें कुछ इंटरप्रेशन गलत हुआ है, या ये उलमा गलत समझा रहे हैं, हर चीज़ में पीछे हटते चले जाएं कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। वह तदऊन मा तुनकिरून, और तुम जो चीज़ें गलत हैं उनको छोड़ते चले जाना, जो अजनबी चीज़ें हैं तुम्हारे माशरे में, जो जानी पहचानी चली आ रही मुसलमानों में, सही तरीक़े पर सही रिवायतों से चली आ रही, उन पर डटे रहना। वह तुकबिलून आला ख़ासतिकुम, और तुम्हारे जो ख़ास लोग हैं जिनको तुम आम लोगों के दरमियान ज़्यादा बेहतर समझते हो उनसे जुड़े रहना। व तज़रून अम्र अवामिकुम, और तुम्हारे अवाम का जो मामला होगा उसको छोड़ देना कि अवाम में जो बातें मशहूर हो जाएं, जो बात आम लोग फैला दें, जिस बात को हवा दे दें, रवाज दे दें, सिर्फ उनके पीछे मत चलते रहना। इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिह, ये मुनाफिकों की सिफत बताई गई, कोई बात पहुंची खौफ की, अमन की, फतेह की, शिकस्त की, फौरन उसको फैलाना शुरू कर दिया। मैं कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ या उन लोगों की तरफ जो समझदार लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं, अगर उन तक पहुंचाते लअलिमहुल्लज़ीन यस्तंबितूनहु मिन्हुम, तो सही तहकीक करके सही बात बताते। आज के दौर में कोई बात आई, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई आर्टिकल, फौरन उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया और लोगों में फैलाना शुरू कर दिया, और सवाब भी बता दिया गया, अगर इतने लोगों तक फैलाएंगे तो इतने हज़ार नेकी मिलेगी, और खौफ बैठा दिया सारे लोगों में। मुनाफिकों की सिफत बताएगी, फरमाएंगे यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम, मुनाफिकों के बारे में फरमाएंगे कहीं से कोई चीख़ो पुकार हो समझते हैं हमारे खिलाफ हो रहे, यही दुश्मन। और तुजीबू का अजसामुहुम, इनके जिस्म बड़े अच्छे लगते हैं आपको, बड़े तवाना, और अगर कुछ कहते हैं तो आपको लगता है कितनी अच्छी जबान है इनकी, लेकिन खुशबू मुसन्नद है, जैसे किसी लकड़ी को दीवार के पर टेक देकर ऐसे खड़ा कर दें, लकड़ी की कोई हैसियत नहीं होती है। ऐसे ये देखने में चलते फिरते इंसान हैं, लेकिन ये लकड़ियों की तरह हैं जिनको दीवारों के सहारे खड़ा कर दिया जाता है, जो इस्तेमाल के लायक भी नहीं होती। फरमाएंगे कि इस तरह की कैफियत जब होगी तो उसमें तुम जमे रहना और कसरत से अल्लाह को याद करते रहना, इस्तिग़फ़ार करते रहना, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहना, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहना, क़ुरान मजीद की तिलावत मत छोड़ना, उस पर अमल मत छोड़ना, उसको समझने की कोशिश और मेहनत मत छोड़ना, तुम मस्जिदों से अपने को अलग मत करना, फजर की जो नमाज हो, जब जिक्र का हुक्म दिया गया तो उससे जो जमात की नमाजें हैं उससे ज़्यादा कितनी हैसियत रखती। अगर तमाम मुसलमान जुमे की तरह अपनी अपने महल्ले की मस्जिदों में फजर की नमाज अदा करने लगें और उसके बाद जिक्र अजकार में मसरूफ़ हो जाएँ, तिलावत करें, अल्लाह से मांगें और रोएं और गिड़गिड़ाएं, तो क्या अल्लाह की मदद करीब नहीं है? लेकिन हम बैठे बैठे सिर्फ ख़बरें पढ़कर और लिखकर और लोगों को बताकर समझते हैं कि जितनी ज़्यादा कानून की मालूमात हो जाएगी उतना ज़्यादा हम कानून का इस्तेमाल कर सकेंगे। वो ज़रूरी है, उसे पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, उसका सहारा लेना ज़रूरी है, इसलिए कि हम उसके तहत इस मुल्क में रहते हैं, उसकी जानकारी, उसका इस्तेमाल, प्रोटेस्ट के नए नए तरीक़े और कानून के इस्तेमाल के नए तरीक़े, हर हालत में हमें फिर क्या करना है जोड़। लेकिन ये कब होगा? जब कहा जाता है कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो 20 करोड़ कहाँ है? ये 20 टुकड़ियों में, 20,000 टुकड़ियों में बटे हुए, तो सब मुसलमान कहाँ है? सब अलग अलग हैं, 20-20 लोगों का अलग अलग ग्रोह है, पता नहीं वो 20 करोड़ में 20 करोड़ जमात है, कुछ पता नहीं। तो फिर 20 करोड़ कहाँ है? फरमाया गया कि अगर वो जमे, वला तनाज़ाऊ, झगड़ा करके एक दूसरे से अलग मत हो जाना कि तुम्हारी नमाज सही नहीं हुई, मेरी नमाज सही हो गई, और तुम नबी को नहीं मानते, हम नबी को मानते हैं, इस तरह की बातों को छेड़ छेड़ कर झगड़े मत करते रहना। अगर झगड़े करोगे फतफशलू, तो नाकाम हो जाओगे, तय है। वतज़हबरी हुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, कोई तुम्हारा वजन नहीं रह जाएगा, कोई ताकत नहीं रह जाएगी, तुमको पूछेगा नहीं, इसलिए कि तुम अकेले अकेले निकलोगे, अकेले अकेले बात करोगे, 10 मुंह तो 10 तरह की बातें, एक ने इधर से कोई बात कही, दूसरे ने कहा नहीं वो उनकी राय है, वो गलत बोलो, उनसे समझिए वो कुछ बोल रहे होंगे, एक कोई राय नहीं है। वतज़हबरी हुकुम, फिर फरमाया वस्बिरू, जम जाओ, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, झगड़ा मत करो, मुत्तहिद हो जाओ, और फिर सब्र करो, व अतीउल्लाह व रसूलह, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो। 5 तरीक़े बता दिए गए कि अगर इन पर तुम कायम रहते हो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। तो जो नहीं करने के काम हैं, ज़रूरी हैं कि इंसान खौफ ना करे, मायूस ना हो, अल्लाह के अलावा दूसरों से डरने लगे, छोटी छोटी भाई, यही मोमिन की शान नहीं। सबसे पहले तो अपने दिल से आदमी खौफ को खुरच कर पे, ये फितरी चीज़ है, डर पैदा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाठी सांप बन गई कि फ़ौजस फ़ी नफ़्सी ख़ीफ़तन मूसा, खौफ महसूस हुआ, लेकिन अपने दिलों में खौफ को इस तरह जगह दे देना कि डर पलने लगे और डर ही समझाने लगे आप लोगों को, और वही उसी पर अपने बच्चों की तरबियत करें, और वही अपने शागिर्दों को तालीम दें, और वही अपने लोगों को बताएं कि डर कर रहा हूँ, और अब कुछ नहीं बचा, अब चलो मुल्क छोड़ के कहीं और, कहाँ जाएंगे मुल्क छोड़ के? अल्लाह ने जहाँ रखा है, जहाँ बसाया है, वहीं रहना है। अगर अपनी जान बहुत कीमती हो गई और अपना माल बहुत कीमती हो गया, इसके अलावा उसके बाद कुछ भी नहीं है, अल्लाह की रज़ा और जन्नत और सब्र और उसके बाद कुछ भी नहीं है, अगर हमारा ये ईमान है तो सब लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं। लेकिन अगर मालूम है कि इस माल और जान की कोई कीमत नहीं है, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल ने जो बातें बताई हैं उस पर बाकी रहते हुए फिर हमें तैयारियाँ करनी चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, जो ताकतें हम तैयार कर सकते हैं दस्तूर की रोशनी में उनको तैयार करना चाहिए, अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, उसकी मशकें होनी चाहिए बड़ी बड़े 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 पैमाने पर, फजर के बाद वर्जिशें होनी चाहिए, हर सतह पर अपने अपने तौर पर आदमी अपने को तैयार करे, अलग ना कर ले मुआशर, सारी दुनिया में जो लोग करते हैं वो करें, और उसके साथ साथ कभी ये ना समझें कि सिर्फ ये चीज़ें हमें महफूज कर लेंगी, बल्कि हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और ज़िक्र इस्तिग़फ़ार से अपने को जोड़े रखें। अगर इंशाअल्लाह ऐसा होता रहेगा तो ये मुसलमानों की तारीख रही है کہ ہمیشہ دبتے ہیں، مٹتے ہیں، پھر ابھرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ کی یہ سنت رہی ہے، یہی اس کا طریقہ رہا ہے تعلیم کو، صحت کے اداروں کو، اور اس قسم کی جتنے اہم کام ہیں جو پازیٹیو وے میں کرنے کے کام ہیں، اس کو بڑے پیمانے پہ کیا جائے، نوجوانوں کو مصروف کیا جائے، یہ فارغ رہ کر اور اپنے اپنے کاموں میں جب فارغ رہتے ہیں تو صرف فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور طرح طرح کی بعض لوگوں کو کچھ روایتیں مل جاتی ہیں، کچھ کو کچھ حدیثیں مل جاتی ہیں، کوئی ابھی سے بیٹھ کر امام مہدی کا انتظار کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچائے گا، یہ ہونا ہے، اپنے اپنے وقت پہ ہوگا، لیکن انتظار کرنے کو نہیں کہا گیا، کہا گیا اگر قیامت قائم ہو رہی اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا بھی ہے تو آپ کو لگانا ہے، اپنا کام کرنا ہے، ہم اپنی سطح پہ کیا کر سکتے ہیں اسے کرنے کو سوچنا ہے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سوچنا ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کیسے پیش کریں، اپنے اخلاق کو کیسے پیش کریں، نفرتوں کو کیسے ختم کریں. آپ پورے ملک میں سفر کر کے دیکھ لیجئے، عام لوگوں میں کوئی نفرت نہیں، بلکہ عام لوگ تو اور زیادہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو نفرت پیدا کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ لوگ ہیں جو شر پیدا کرنے والے، وہ بدمعاش گروہ کے لوگ. تو ایسے لوگوں کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ایک پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں، ان کے لیے دوسری کوششیں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور سے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کی عیادت، ان کی تعزیت، ان کی مصیبت میں کام آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، اپنی تجارتوں کے اندر سچائی اختیار کرنا، اپنے کو ظلم سے بچانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مضبوط بناتی ہیں، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے اور حالات بدل دے، ملک کے حالات، دنیا کے حالات، اور تمام وہ مسلمان جو دنیا میں کہیں بھی ستم رسیدہ ہیں، یا کوئی بھی انسان یا اللہ کی مخلوق، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.